12th of August Jalandhar Dharm Sthanak Pathshala hai ghar prayogshala hai asterisk the 12th of August ko Jain Sthanak Gudmandi Jalandhar mein Janacharya Shri Gyan Chandra ji Maharaj sahab ne upasthit jansamuh ko sambodhit karte hue farmaya ki Mahavir ki sanskriti shram se judi hai jiska matlab hai jo bhi milega wo shram se milega bina shram ke kuch nahi milta hai मोक्ष प्रमाद से नहीं प्रयास से मिलेगा महावीर प्रार्थना से नहीं प्रयत्न से मिलेगा परमात्मा पूजा से नहीं पुरुषार्थ से मिलेगा सुख याचना से नहीं यत्न से मिलेगा जो भी प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए अथक मेहनत की जरूरत है पुरुषार्थ बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार करा देता है प्रार्थना भक्ति पूजा सब अच्छे हैं लेकिन यह सभी फलदायी होते हैं जब उसी अनुसार पुरुषार्थ भी किया जाए धर्म स्थान आपकी पाठशाला है तो घर दुकान आपकी प्रयोगशाला है सामायिक यहाँ की तो उसमें प्राप्त समता का असर घर दुकान सभी कार्यों में नजर आना चाहिए जैसे महीने भर तक नौकरी की और एक तारीख को वेतन मिला वो जेब में रखकर हर जगह ले जा सकते हैं उसी प्रकार प्रतिदिन की सामायिक से जुड़ी समता भी हर स्थान पर होनी चाहिए जब प्रवचन सुने तो केवल प्रवचन ही सुने उसमें दूसरी बात नहीं आनी चाहिए व्यक्ति प्रवचन जरूर सुनता है पर उस प्रवचन में रंग अपने विचारों के अनुसार भरता है मन को खाली करके सुनना मुश्किल है पर्युषण पर्व में हर घर में अध्याय का एक दीप तो जलना ही चाहिए बाकी सभी जन हर आठों दिन एक साथ पांच पांच सामायिक करते हैं तो आपको हर दिन एक पांच पांच सामायिक के साथ एक उपवास का लाभ मिलता है इस प्रकार आठ दिन करने से अध्याय हो जाती है साथ ही पांच पांच सामायिक का लाभ भी मिलता है तो क्यों नहीं करना सामायिक करने वाला 24 घंटे समता रखकर अपने जीवन में सुख पा सकते हैं पर्युषण में सुबह शाम प्रतिक्रमण भी करना जरूरी है जो प्रतिक्रमण कराता है उसे सुनो मिच्छा मी दुक्कड़म एस्टरिस्क मी यानी मेरे दुष्कृत्य पाप वो दुख निष्फल हो इस प्रकार हम पाप को धोते चले जाते हैं इस प्रकार पर्युषण पर्व में विभिन्न साधनाएं की जा सकती है भगवान महावीर ने कहा है सोचा ने अयम मग्ग बहवो परिबसी इस प्रकार न्यायुक्त सच्चे मार्ग को सुनकर भी कई लोग न्याय सत्य से गिरकर अपने जीवन का पतन कर लेते हैं एक नगर में एक वैद्य रहता था वो धन का खूब लोभी था अपनी आजीविका के योग्य धन प्राप्त होने के बाद भी अति लोभ के कारण औषधि बनाने के लिए हरे वृक्षों को छेदन भेदन करता ही रहता था क्योंकि देशी दवाएं वनस्पतियों से बनती है उस नगर में एक बार संत पधारे उन्होंने कहा भाई तुमने बहुत धन कमा लिया है अब वैद्यगिरी छोड़ दो भाई वनस्पति के एक पत्ते में अनंत जीव होते हैं उनको छूने मात्र से भी अनंत वेदना होती है तुम महंगी दवाइयां बनाने के चक्कर में कितनी वनस्पतियों का छेदन भेदन करते हो अब तो तुम्हारे पास पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया है जिससे तुम्हारी जिंदगी का गुजर बसर हो सकता है इस प्रकार गुरु के सदुपदेश से वैद्य ने वैद्यगिरी छोड़ दी कुछ समय बाद चार बड़े बड़े सेठ उसके घर दवा लेने आए सामने से रुपयों की थैली रखकर बोले हे वैद्यराज आप धन ग्रहण कीजिए और रोग मुक्त कीजिए वैद्य ने सोचा घर आए धन को क्यों ठुकराऊं मरीज स्वयं चलकर घर आए हैं लोभ संज्ञा जाग उठी मरीज को देखा और इलाज किया वैद्य ने फिर से अपना काम काज शुरू कर दिया अंत में हाय पैसा करते करते धन की आसक्ति के कारण आर्थ्यान में मरकर जंगल में जंगली बंदर बना बंदर भी कैसा आदमी को देखे तो मानो फाड़ खाए इतना उपद्रवी बंदर जंगल में पेड़ पत्ते फल फूल तोड़ता धमाल मचाता रहता पूर्व भव में पाप तो बहुत किए थे पर उसे धर्म श्रद्धा थी वो जानता था धन की आसक्ति दुर्गति में ले जाती है इस श्रद्धा से पुण्य का उदय हुआ जंगल में भी उसके लिए मंगल बन गया एक बार उधर से मुनियों का वृंद गुजर रहा था कि एक मुनि के पैर में शूल चुभ गया वो शूल इतना गहरा चुभा कि किसी तरह निकल नहीं रहा था। दर्द इतना कि पैर उठाया भी नहीं जा रहा था। अब तो रास्ता कैसे काटेंगे? यह सोचकर मुनि ने अन्य संतों से कहा कि आप सब शिष्य परिवार के साथ आगे पधारिए। मेरे एक के कारण सबको अन्न पानी का अंतराय क्यों हो? मैं सागारी संधारा करता हूँ। यदि शूल निकल गया और मैं चल सका तो आ जाऊंगा। गुरु उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, पर शिष्य बहुत समझदार था। उसने आग्रह के साथ लगभग जबरदस्ती उन सबको भेज दिया। संतों के मन में भी यही था कि हम शीघ्र गांव पहुंचकर इनके लिए औषधि लेकर आएं। अब जंगल में मुनि अकेले ही रह गए। वो जंगली बंदर भी कूदता हुआ उधर आ गया। उपद्रवी बहुत था, लेकिन संत को देखकर शांत हो गया। उसके मन में उहापोह होने लगा। अहो, मैंने ऐसे मुनि को कहीं देखा है? विचार करते करते बंदर को जातिस्मरण ज्ञान हो गया। उसे अपना पूर्व भव याद आ गया और मानव भव में धर्म साधना के स्थान पर कर्म साधना करने की भूल समझ में आ गई। उसकी भयंकर सजा के रूप में प्राप्त इस वानर अवतार से उसे बहुत अफसोस हुआ। यहाँ फिर वही कर्म साधना, मोह साधना, इस तरह तो उसकी महासक के रूप में अधर्म तिरंच भव की परंपरा चलती रहेगी। ऐसे विचार उसकी आत्मा को कंपाने लगी। ऐसे तो मेरी दुर्गति होती रहेगी। अब तो जातिस्मरण ज्ञान के कारण पूर्व भव में किए पाप कर्मों का अफसोस होने लगा। जिस धन को अवश्य ही छोड़कर जाना था, उस धन के पीछे पागल बनकर मैंने कैसे कैसे पाप किए, आज उसी के फल उदय में आए हैं। मनुष्य भव धर्म आराधना करके पाप छोड़ने का अमूल्य अवसर था, पर मैंने कुछ न किया। अब पशु के भव में क्या धर्म आराधना करूं? अब तो निरंतर नए कर्म बंध रहे हैं, पुराने भी बहुत बंधे हैं। अब तो मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। हे भगवान, मेरा क्या होगा? ऐसे विचारों में उसकी आंखों में आंसू आ गए। संत के पैर से रक्त निरंतर बह रहा था। कांटा चुभा हुआ देखता है और जात स्मरण ज्ञान होने के कारण पूर्व भव में किया वैद्य का कार्य याद आ जाता है। पता चल गया कि किस औषधि से इस दर्द पर आराम होगा। दौड़ता हुआ जंगल में जाकर निर्दोष औषधि ले आया और साधु के पैर में लगाने लगा। संत सोचते हैं कि यह जंगली बंदर क्या कर रहा है, पर अब तो संभाव से सब देखते रहना है। बंदर धीरे से वो औषधि मुनि के तलवे में चुपर देता है। थोड़ी ही देर में कांटा ऊपर आ जाता है तो धीमे से उसे खींच कर निकाल देता है। दूसरी औषधि से रक्त निकलना बंद कराया और घाव पर दवा लगा दी। संत उस बंदर को रोते देख और उसका काम देखकर समझ गए कि कोई आत्मा मानव भव से भव सागर में भटक गई है। संत ने उसे आश्वासन देते हुए धर्मोपदेश दिया और कहा, इस जगत में पाप करने और भोगने में कोई नवीनता नहीं है, लेकिन जिनेश्वर देव द्वारा प्रोरूपित धर्म का शुद्ध मन से आराधन करने से असंख्य भव का पाप मात्र एक भव में नष्ट किया जा सकता है। अतः अब तू धर्म की आराधना कर। तू देशावकाशिक व्रत ग्रहण कर, अर्थात जब जब तुझसे संभव हो तब तब क्षेत्र और काल की मर्यादा करके भगवान के ध्यान में लीन बन जाना। अमुक समय के लिए अमुक हद से बाहर न जाना और ध्यान धरने का व्रत बंदर ने अंगीकार किया। निरंतर बंदर का देशावकाशिक व्रत चलता रहा। एक बार बंदर व्रत अंगीकार करके एक पत्थर की शिला पर बैठा था। अचानक एक भूखा सिंह गर्जना करता उधर आ निकला, परंतु बंदर का व्रत था कि उतनी जगह से बाहर नहीं जाना है, इसलिए जरा भी व्याकुल हुए बिना वहीं बैठा रहा। जीने का मोह नहीं और मरने का डर नहीं, भूखा सिंह बंदर पर टूट पड़ा। बंदर ने संपूर्ण पच्चखान ले लिया और मन में नवकार मंत्र का स्मरण करता रहा। सिंह बंदर को चबा गया, पर बंदर सोचता है, देह चबाई जा रही है, मैं नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसे कोई मार नहीं सकता। गुरुदेव आप नहीं मिलते तो तिरने का मार्ग कौन बताता? इस तरह विचार करते करते उसे समकित रत्न की प्राप्ति हो गई। अपने व्रत और शुभ ध्यान में स्थिर रहने के कारण बंदर मरकर वैमानिक देव बना। वहां अवधि ज्ञान से उन संत को देखकर यहां उनके दर्शन करता है तथा अपनी पहचान बताता है। तत्पश्चात जिन शासन की प्रभावना करने में सहायक बन गया। देवलोक से च्यव कर मनुष्य भाव में विद्याधरों का सम्राट बना तथा जिन शासन का महान आराधक और प्रभावक बन फिर अल्पकाल में मोक्ष जाएगा। आत्मा जब जाग जाती है तो तिरंज गति से भी कल्याण कर लेती है। अतः न्याय युक्त मार्ग को जानबूझकर नजरअंदाज करने वाला भटक जाता है। मानव जीवन आपको मिला है, धर्म सुनने को मिल रहा है। अब आचरण के लिए पर्युषण पर्व सामने है, उस प्रसंग से जीवन में धर्म को अपनाइए, जीवन सफल करिए। श्री रिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हो।